அவங்களே நண்பர்கள் ரெஜிஸ்டர்னு போறாங்க. டே சார் அட்டாச்சிக்க பாத்துக்கல ரிட்டையர் சலா ஹை முஜ்கோ சஹாரா தேனே வாலே भगवान वाच बाप ने समझाया है कि भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा बरोबर भगवान वाच रचयिता हुआ भगवान और रचना हुई भगवती. जैसे बैरिस्टर हुआ थे सर्जन हुआ थे ये फिर है भगवान हुआ. भगवान कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक राजाओं का राजा बनाऊंगा. यह है गीता. परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था. प्रश्न तो था मनुष्य सड़क का नंबर वन प्रिंस तो सड़क के नंबर वन प्रिंस की इतनी ऊंची प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई. ऊंच से ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण जी. ये बात कोई भी समझ नहीं सकते. राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो उनको ये ऊंच पद किसने दिया. कृष्ण कौन था और नारायण कौन था ये बातें तुम ही जानो. कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं. जयंती भी मनाते हैं. तो जिससे कृष्ण का स्वयंवर हुआ उनकी भी तो महिमा होगी. राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं. उनको ऐसा भगवान भगवती किसने बनाया. जगदम्बा को भी भगवती कहते हैं. बीच में लगाया है क्या भगवती दो हो गई क्या. जगदम्बा को भी भगवती कहते हैं. अच्छा उनको भगवती किसने बनाया. है तो मनुष्य. मुदाएं जिसको दी हैं तो इतनी मुदाओं वाला है तो मनुष्य ही और किसी को नहीं दी है. बात करते हैं बच्चे ये जो भगवती भगवान हैं उन्हों को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया. ये है जो भगवती भगवान हैं ये जब कहते थे बाबा ब्रह्मा के मुख से तो किसकी तरफ इशारा करते थे. पितृ की तरफ. तो प्रश्न पूछा जगदम्बा को किसने बनाया और लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है उसकी तरफ इशारा करके किया है उनको भगवान भगवती किसने बनाया. ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन. हो करके गए हो ना. यह बात सिवाय भगवान की और कोई समझाया नहीं सकता. बाप कहते हैं तुम विद्वान पंडित आदि से पूछो, ये राधे कृष्ण जो स्वयंवर के बाद भगवती भगवान लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ये इन्हों को किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का रचयिता नहीं कहेंगे, स्वच्छता रचयिता भी नहीं कहेंगे, उनको विश्व का मालिक कहेंगे। तो रचयिता कौन हुआ? रचयिता कौन हुआ? लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। इस शक्ति की रचयिता उनको नहीं कहा जाएगा, रचयिता तो एक निराकार को ही कहा जाता है। साकार को कब क्रिएटर नहीं मानेंगे, इनकार को भी गॉड फादर कहते हैं, तो जरूर निराकार ही क्रिएटर हुआ। तो ये स्टेज की बात है। हाँ, लक्ष्मी नारायण सत्य बाद में थे, अभी तो कलयुग है। यहाँ तो मनुष्य दुखी और कंगाल है, राजा रानी तो कोई है नहीं, स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग याद आ जाता है। स्वर्ग याद कब आता है? जब कोई मरता है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी असली असली स्वर्ग की रूपरेखा बुद्धि में कब बैठती है? दूरी पर बैठ, हथेली पर स्वर्ग की रूपरेखा सारा नक्शा कब खींचता है? ऐसा मनन चिंतन मंथन कब चलता है? जब तक जी के जी नहीं मरे हैं, पुरानी दुनिया से देह और देह के संबंधों से, तब तक नई दुनिया का नक्शा बुद्धि में फिट नहीं सकता। स्वर्ग याद आ नहीं सकता। स्वर्ग जरूर कोई अच्छी चीज थी, नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म जरूर नरक में लेना पड़े। मरने की बात है, जहां और जिसके लिए मरेंगे वो जाके गति होगी, अंत मते तो गति। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहां जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान है निराकार ज्ञान का सागर, जिसको सभी मानते हैं, उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। निराकार की यादगार कौन सा? तो उनके मंदिर में क्या है? शिवलिंग। न हाथ न पांव न नाक आंख न कान, इंद्रियों की स्मृति से परे, तो वो निराकारी स्टेज दिखाई गई। ऐसे नहीं कि शरीर है ही नहीं, शरीर तो है लेकिन इंद्रियों की स्मृति स्मृति नहीं है। ये है निराकार का मंदिर, निराकारी स्टेज का यादगार। लिंग हुआ ऐसी स्टेज में रहने वाला शरीरधारी, और उसमें जो बिंदु रखते हैं वो हुआ स्त्री से परमात्मा से। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे ये ब्रह्मा है ये विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे। भगवान एक निराकार को ही कहेंगे। यहां तीन देवताओं का नाम लिया, भगवान ब्रह्मा या भगवान विष्णु नहीं कहेंगे, भगवान निराकार को। और वो निराकार शिव ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। बन रहे बनते रहे भगवान भगवती कौन? जो विश्व के मालिक हैं वो भगवान भगवती कहे जाते हैं, लेकिन उनको बनाने वाला कौन? किस द्वारा बनते हैं? भगवान द्वारा। बनाने वाला हुआ भगवान, तो जो बनाने वाला है वो एक हुआ या दो हुए? गॉड इज वन। तो क्रिएटर बाप है वो ईश्वर करते हैं। जरूर उसने प्रारब्ध दी जो ये सड़क का मालिक बने। पुत्र तो तुम बच्चों के पास है, ये भी मनुष्य समझते हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। सिर्फ ये भूल हुई है कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे। बड़े हुए तो उनको टाइटल मिला अपने माता पिता का। कौन सी लक्ष्मी नारायण की बात हुई? सतयुग के मालिक की, विश्व के मालिक की बात नहीं हो रही है। सतयुग में तो महाराजा महारानी थे, तो जरूर उन्हों का बचपन भी होगा। उन्हों की ये प्रारब्ध जरूर उस तरह की रचयिता ने बनाई होगी। सतयुग में जो महाराणा महाराजा महारानी होते हैं उनकी प्रारब्ध कितने वर्षों की होती है? स्वर्ग के सुख की प्रारब्ध है कितने वर्ष की? 200 वर्ष की। तो उस प्रारब्ध को बनाने वाला स्वर्ग का रचयिता वो कब आया ये बात किसको भी पता नहीं है। शिव का लिंग तो है। आया इस दुनिया में तो जिस रूप में आया उसका यादगार शिव का लिंग तो है। ये शिव का बड़ा रूप करके रखा है क्या लिंग। शिव तो बिंदु होता है, छोटा रूप तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लेकिन यादगार बड़ा लिंग रखा है। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो नहीं है ना, वो तो स्टार है। कौन सुप्रीम को उनका कोई चित्र तो समझ न सके, तो ये बड़ा चित्र सिर्फ पूजा के लिए बड़ा बनाया हुआ है। बिंदु को तो सिर्फ याद किया जा सकता है, बिंदु की पूजा पूजा नहीं हो सकती। बिंदु के ऊपर जड़ फूल या चैतन्य फूल अर्पण नहीं किए जा सकते, वो तो सिर्फ ऊपर किए जाएंगे, साकार के ऊपर ही किए जाएंगे। तो पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। और ये यादगार भी कहां की है? संगम इसी यादगार है। तो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? उसका नाम चाहिए। जैसे मुस्लिम धर्म मोहम्मद ने स्थापन किया, बुद्ध धर्म बौद्ध ने स्थापन किया, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, तो धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? उसका नाम चाहिए। क्या नाम हुआ? ब्रह्मा के चार पुत्र दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं की। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा का जो बड़ा पुत्र है सनत कुमार, उसके द्वारा सनातन धर्म। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म, एक मात्रा बढ़ जाती है। क्रिश्चियन बौद्ध आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया, और उनका धर्मशास्त्र ये है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को पता नहीं। ये किसने स्थापन किया? पहले पहले मुख्य बात है ये कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया, इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं, समझाने के लिए ही बनवाते हैं। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़ी थी, गणेश का चित्र बनाते हैं, गणेश क्या था? सूंड वाला मनुष्य था। सूंड वाला मनुष्य, सूंड वाला मनुष्य तो जानवर हुआ या मनुष्य हुआ? हुआ तो मनुष्य, लेकिन निशानी जानवरियत की दिखाई गई है। मुख में देह लाने कैसे दिखाया जाए, तो सुन दिखाई दी। काम विकारी की निशानी कैसे दिखाई जाए, तो पूछ दिखाई दी कमर में। तो सुन वाला मनुष्य था तो उनके स्त्री बच्चे भी सुन वाले होने चाहिए। गुआ नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। गणेश के बच्चे दिखाते हैं शास्त्रों में सुन वाले वो तो है नहीं। तो ये सब भक्ति मार्ग में कोई ने क्या बैठ करके बना दिया है, ये तो समझाया है स्वर्ग का रचयिता है परमपिता परमात्मा। दूसरा तुम स्वर्ग में है सदा सुख, क्या इतने सब मनुष्य कहाँ होंगे जो आज की दुनिया में है। झाड़ पहले छोटा होता है क्योंकि शत्रु जो है आदि का युग, शत्रु का आदि, तो जो सत्य प्रधान छोटी चीज है वो फिर बाद में बढ़ती जाती है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे और नरक में बहुत होंगे। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, ये बात और कोई नहीं जानती। पूछना चाहिए शशि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको स्वर्ग कहा जाता था। वो तो पास हो गया, नई दुनिया जो थी वो अब पुरानी दुनिया नरक हो गई है। दुनिया की हर चीज नई होती है तो सुखदाई और पुरानी होती है दुखदाई। तो ये दुनिया भी पुरानी अर्थात नरक दुख देने वाली हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर जरूर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग को व मुक्ति धाम को, क्यों याद करते हैं? क्योंकि इस दुनिया में दुख है, बंधन है, तो मुक्त होना चाहते हैं, सुख चाहते हैं। यहाँ तो अल्पकाल का सुख और दीर्घकाल की दुखी की दुखी रहने की स्थिति। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है। बाप थोड़े ही बच्चों को रच करके दुखी बनाएगा, ये तो नहीं हो सकता। विद्वान आदि जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्होंने तो लिख दिया है कि सत्य को त्रेता में भी राक्षस थे। शास्त्र में ये बात लिखी हुई है कि सत्य में हिरण्यकश्यप राक्षस था, प्रहलाद जैसे बच्चों को दुख देता था, प्रजा को दुख देता था, त्रेता में रावण कुंभकर्ण मेघना था भी राक्षस थे। तो शास्त्रों में ये जो बातें लिखी हुई हैं, वो सारे संगम की शूटिंग पीरियड की यादगार हैं। परमात्मा बाप जब आते हैं तो हर धर्म की चुनी हुई आत्माएं बाप की जो रचना है स्वर्ग, उसमें नंबरवार जाने योगी बनती है। लेकिन परिवर्तन उनका नंबरवार होता है। जो असली देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होते हैं वो पहले कन्वर्ट हो जाते, वो देवता बन जाते हैं मनुष्य से। और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं उनको थोड़ा टाइम जाती लगता है, वो अपने आखिरीपने को जल्दी नहीं छोड़ पाते। तो संगम जी ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है। दो प्रकार के ब्राह्मण बनते, आखिरी दामन और शेष दामन। तो शास्त्र ऐसे ऐसे बनाने की ड्रामा में नूद है। अगर ये ऐसे शास्त्र न बने होते तो परमात्मा का ज्ञान भी समझ में नहीं आता। उससे हम कंट्रास्ट कर सकते हैं कि ये कहां की बात है। वो समझते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलता है। अच्छा, शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलता है, वो कौन सा भगवान है जो शास्त्र पढ़ने से मिलता है और कब मिलता है और उस भगवान से क्या मिलेगा? पता उनको कुछ भी नहीं। तुम तो जानते हो शास्त्रों द्वारा भगवान नहीं मिलता, हृदय के द्वारा मिलता है। भगवान शास्त्रों से नहीं मिलता, हृदय के द्वारा मिलता है। ज्ञान से भगवान मिलता है। ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान ही तो अगर भगवान देता है, भक्ति से भगवान मिलता है। अगर भावना नहीं, अगर भावना नहीं है तो बुद्धि से भगवान को भल पहुंचाना। लेकिन बुद्धिवादियों को भगवान मिल नहीं सकता। मेल कब होगा? आत्मा और परमात्मा का मेला कब होगा? जब भावना होगी। भगवान को दिल वाले बच्चे प्रिय हैं, दिमाग वाले बच्चे प्रिय नहीं। क्योंकि भगवान तो स्वयं ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। उसे कोई अपनी बुद्धि का वैभव क्या दिखाएगा? तो किसी को कुछ पता नहीं है। ये भक्ति आधा कल्प चलती जरूर है। क्या था? भक्ति से भगवान मिलता है और भक्ति से पतन होता है या उत्थान होता है? ज्ञान से क्या होता है और भक्ति से क्या होता है? ज्ञान से गति सदगति होती है और भक्ति से दुर्गति होती है। और फिर भक्ति से फायदा क्या है? भक्ति से भगवान मिलता है तो क्या लेना है? भक्ति से भगवान मिलता है तो भगवान लेना है और भक्ति से फिर दुर्गति भी होती है। हाँ, भक्ति से भगवान तो मिलता है, लेकिन अगर भावना शुद्ध है आप भी भावना शुद्ध है तो भगवान मिलेगा, लेकिन वृत्ति कला नहीं होगी। वृत्ति कला कब होती है? जब भावना अशुद्ध होती है। भक्ति में विचार पैदा होता है तो पतन होता है। शूटिंग पीरियड में इसका क्या हिसाब होता है? क्योंकि हर बात का बीज कहाँ पड़ता है? संगम में ही बीज पड़ता है। कतिगो से त्रेता द्वापर कलयुग ये तो होना ही है। कतयुग का अंत और त्रेता की आदि का संगम ये कोई कल्याणकारी संगम नहीं है। और सत्यु का आदि पीरियड में भी ऐसा ही होता होगा। सत्युग की शूटिंग और त्रेता युग की शूटिंग दोनों का जो संधि काल है वो कल्याणकारी हुआ या नहीं हुआ है? सत्युग की शूटिंग का पीरियड 40 वर्ष सत्युग से लेकर त्रेता और फिर बाद में त्रेता युग की शूटिंग 12 वर्ष 70 से लेकर 88-89 तो सत्युग की शूटिंग का समय प्रधान हिस्सा और त्रेता युग की शूटिंग का सतो प्रधान हिस्सा ये कल्याणकारी हुआ या नहीं हुआ उस समय कौन सी आत्माएं निकलती है एडवांस पार्टी में स्वदेशी या विदेशी? स्वदेशी। स्वदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं या विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं? पहले प्रत्यक्ष कौन करते विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो विदेशी जो बीज हैं ब्रह्मा के चार पुत्र गाए गए हैं चारों ही चार बड़े धर्मों के बीज हैं। देवता इस्लामी बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म के बीज उनमें जो विदेशी धर्मों के बीज हैं इस्लामी बौद्ध और क्रिश्चियन वो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। लेकिन संगम युग कल्याणकारी है उस समय या कल्याणकारी है? सत्युग त्रेता का संगम कल्याणकारी हुआ या अकल्याणकारी हुआ? सत्युग त्रेता का संगम वो कोई कल्याणकारी संगम नहीं है क्योंकि रात्रि के 12 बजे सूर्य कहने में तो आता है जहाँ सूर्य उदय होता है लेकिन वास्तव में पूरा उदय नहीं होता। इसलिए जब उदय नहीं हुआ तो विदेशियों के लिए तो सूर्योदय की तारीख रात्रि के 12 बजे चेंज होती है लेकिन भारतवर्ष में जब सूर्य निकलने को होता है उसी समय तिथि चेंज करते हैं। नए दिन की शुरुआत सूर्य निकलने के बाद मानते हैं। तो भारतवासियों के लिए खास कल्याणकारी योग परमात्मा खास कल्याण करते हैं और दुनिया का आम कल्याण करते हैं। तो शीतल पीरियड में भी ऐसे होता है। 70 में निकली हुई जो एडवांस पार्टी की आत्माएं दूसरे धर्म की विदेशी बीज वो बाप को प्रत्यक्ष तो करते हैं लेकिन बुद्धिवादी होते हैं भावनावादी नहीं होते दिल वाले नहीं होते। दिल वाला बाप दिल वाले बच्चों को पसंद करता है इसलिए बाप को प्रत्यक्ष तो करते हैं लेकिन एक तरफ प्रत्यक्ष करते हैं और दूसरी तरफ देहाभिमान में आकर बाप को गुप्त भी कर देते अपने को प्रत्यक्ष करने लग करते। इसलिए बताया कि सतयुग का अंत अर्थात सम प्रधान हिस्सा और त्रेता का आदि अर्थात त्रेता का सतो प्रधान हिस्सा इनका जो संधि काल है वो कोई कल्याणकारी नहीं है क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है वो देवी देवता फिर 14 कला बन जाती है। तो वो कल्याणकारी युग थोड़े ही हुआ कलाएं तो कम हो गई ना। तो त्रेता के अंत द्वापर की आदि का भी संगम युग हुआ परंतु उसमें भी कलाएं कम होती क्या? त्रेता का अंत और द्वापर का आदि देसी कला तो उसमें भी होती है ना। सतो प्रधान से सतो रजो तमो गिरते हैं, क्योंकि तमो प्रधान तो उस समय बनना ही है। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है, इतने पीरियड में कौन सी दुनिया सारी दुखी है? ब्राह्मणों की भी सारी दुनिया इस समय दुखी है। क्यों? क्योंकि संशय और निश्चय का चक्र चलता रहता है। तो उसको कहा जाता है आर संस की दुनिया। पक्का निश्चय दुखी हो जाए कि हमारा बाप आया हुआ है, बाप ही मालिक है, तो फिर मनुष्य मत पर या मन मत पर चलने की दरकार नहीं रहेगी। और जब निश्चय उभरता है तो या तो मन मत पर चलने लग पड़ते हैं या मनुष्यों की मत पर चलने लग पड़ते हैं। जैसे आरसंख के बन गए, आरसंख यतीन जिसका कोई धनी ढोरी न हो, देखभाल करने वाला न हो, कोई धनी ढोरी नहीं, घर में माँ बाप नहीं होते हैं तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते। तो कहा जाता है तुम तो निर्धन के हो, तुम्हारा कोई धनी ढोरी नहीं है। अब वो तो वही हद की बात, और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी ढोरी नहीं है, चाहे वो अर्ध की दुनिया हो और चाहे ये बेहद की दुनिया हो। पांचन की धनी ढोरी अभी कोई है नहीं, मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं और जानवर भी लड़ते हैं। तो कोई धनी ढोरी नहीं हुआ ना, धनी है बाप रे बेटा, उनके आने से ही सब बच्चे धनी के बन जाते। तो अभी आया नहीं क्या है? आ गया कि नहीं आया? आ गया, पूरा पूरा आ गया, तो थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया है? आया और नहीं आया, ये भी देखने वालों के ऊपर निर्भर करता है। उनकी आंख में दिखाई पड़ता है कि आया तो आया, और अंधेरा आ जाता है, क्योंकि माया भी तो अपना काम कर रही है ना। माया और माया के साथ कौन? रावण। तो आंखों के आगे वो पर्दा डाल देते हैं, और जब पर्दा पड़ जाता है तो भगवान बाप चुप जाता है। तो जो आया हुआ है वो भी नहीं दिखाई पड़ता, माना आया और ना आया बराबर हो गया। तो बताया उनके आने से ही सब बच्चे धनी के बन जाते हैं, बाप बच्चों को शांति धाम के सुख धाम ले जाते हैं। कब? जब बच्चे धनी के बन जाते हैं। दोनों जगह सुखी बन जाते हैं, पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो, हर एक चीज तो होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान है, इसलिए प्रिय लगते हैं। दो बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो माँ बाप के तो तंग करने लग पड़ते हैं, तंग तो होते हैं ना, मरते झगड़ते बीमार हो पड़ते, कोई को नुकसान पड़ता है तो ये भी दुख होता है ना, क्या तुम्हें कोई भी दुख नहीं होता? वो है ही सुखधाम। बाप बच्चों के लिए फिर से स्वर्ग रहते का सदैव सुख तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो ये बेहद की दुनिया नई थी अब पुरानी है, पहली पुरानी और नई है ना। पुरानी दहली अलग है और नई दहली अलग है। वाह, दुखदाई कौन सी होगी और दुखदाई कौन सी होगी? क्रीम एरिया किसे कहें और कंजस्टेड एरिया किसे कहें? कौन सी दिल्ली सुखदाई? नई दिल्ली सुखदाई, लेकिन नई दिल्ली भी दो तरह की है। एक है भगवान की रची हुई नई दिल्ली और एक है इंसानों की पिक्चर्स की रची हुई नई दिल्ली। एक चैतन्य दिल्ली और एक जड़ दिल्ली। जड़ दिल्ली और चैतन्य दिल्ली। पहले चैतन्य दिल्ली में सुखधाम स्थापन होगा या जड़ दिल्ली में सुखधाम स्थापन होगा? चैतन्य अर्थात मन बुद्धि सहित। तो मन बुद्धि में पहले स्वर की स्थापना होती है या जड़ में पहले स्थापना होती है? जरूर पहले चैतन्य में होनी चाहिए। तो दिल्ली भी दो हो गई, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली में किसने शासन किया? अंग्रेजों ने पुरानी दिल्ली में शासन तो किया लेकिन पुरानी दिल्ली को बनाया नहीं। अंग्रेजों ने नई दिल्ली बनाई तो किंत ने बनाई नई दिल्ली, वो तो जड़ है। और कृष्ण बनाता है चैतन्य दिल्ली, वो चैतन्य है जिस कृष्ण की राजधानी कही जाती है। दोनों अलग अलग, पुरानी दिल्ली भी अलग और नई दिल्ली भी अलग। नई दिल्ली देखने में कितनी अच्छी आती है, ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ाए देंगे। पुरानी भी रहेगी कि नहीं रहेगी? सत्युग में जाएगी कि नहीं जाएगी? पुरानी भी सत्युग में जाएगी। ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ाए देंगे फिर कहेंगे कि हम रहेंगे कहाँ, ज्यादा घनी आबादी कहाँ है, पुरानी दिल्ली में या नई दिल्ली में? ज्यादा घनी आबादी तो पुरानी दिल्ली में, तो रहेंगे कहाँ? यहाँ नई और पुरानी दोनों हैं। फिर ये पुरानी टूट करके नई बनेगी। जिसको ईश्वर कहा जाता है, कृष्ण का राज्य जमुना नदी किनारे कहा जाता है, यमुना नदी किनारे कृष्ण का राज्य क्यों कहा जाता है? गंगा नदी किनारे क्यों नहीं? गाय तो ज्यादा गंगा का है, पति के पावनी तो गंगा नदी मानी जाती है, फिर यमुना किनारे राज्य क्यों? क्योंकि तीन नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसमें बीच की नदी कौन सी है? न्यूट्रल। सरस्वती नदी न्यूट्रल है, गंगा नदी श्वेत जल वाली। सत्य प्रधान दिखाते हैं, اور یمنا ندی تالے جل والی، گنگا ندی کے جل میں کیڑے نہیں پڑتے اور یمنا ندی کے جل میں کیڑے بھی پڑ جاتے. آگرہ میں، متھرا میں یا دلی میں جا کے دیکھنا گرمیوں کے دنوں، تو یمنا ندی پر کس کا راج جایا ہوا ہے. کارن کیا ہوا؟ بھگوان کا کام کیا ہے؟ پہلے کس کو اٹھائے گا؟ ہاں جو زیادہ پتت ان کو ہی آ کر کے پاون بناتا ہے، پتتوں کو ہی بھگوان آ کر کے پاون بناتا ہے. تو دہلی کو پرستان کہا جاتا ہے، دہلی قبرستان اور دہلی پرستان. دلی کے کون سے حصے میں سب سے جاستی خون کی ندیاں بہی ہیں؟ پرانی دہلی میں یا نئی دہلی میں؟ ہسٹری میں پرانی دہلی میں جاستی خون کی ندیاں بہی ہیں. تو وہ دلی کا حصہ جاستی قبرستان بنتا ہے اور وہ جاتی پرستان بھی بنتا ہے. اس سمے ہے قبرستان. ستی میں لکشمی نارائن کا راجی تھا، دہلی پرستان تھی، سرگ تھی، اب نرک ہے. اب تم بچوں کو یہ سب سمجھایا جاتا ہے کہ پریوں کا استھان کیا ہوتا ہے اور قبر کا استھان کیا ہوتا ہے. پریاں کیا کریں گی؟ جان اور یوگ کے پنکھوں سے اڑیں گی. وہ کوئی بندھن میں رہنے والی نہیں ہوتی. اب قبر میں پڑا ہوا مردہ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بے ابھیمانی کی مٹی میں دب گیا، بندھن میں آ گیا. اڑنے کا تو سوال ہی نہیں اونچی اسٹیج میں. اس سمے تو ہے قبرستان، اب نرک ہے. تو یہ اب تم بچوں کو سب سمجھایا جاتا ہے. باپ خود سورج کا مالک نہیں بنتا ہے، بچوں کو بناتے ہیں. جو خود ڈاکٹر نہیں ہوگا وہ ڈاکٹر کیسے پڑھائی پڑھا کے ڈاکٹر کیسے بنائے گا؟ کون سا باپ سورج کا مالک نہیں بنتا؟ تو باپ کو سورج کا مالک نہیں بنتا، تم بچوں کو بناتے ہیں. تم کہتے ہو بابا ہم کو پھر سے سورج کا مالک بنائے رہے گی. اتنے سب نشچے بدھی ہیں تو دیکھ کر کے نشچے بدھی بننا چاہیے نا. کوئی لندن دیکھ کر کے آئے اور ورنن کرتے ہیں تو ایسے تھوڑے ہی کہیں گے کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں تب ہی ہم مانیں گے کہ لندن ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ان کو تو منہ سے کہنا چاہیے. یہاں بھی اتنے سب بچے کہتے ہیں کہ ہم کو بھگوان پڑھاتے ہیں تو جھوٹ نہیں بول سکتے. کرم تو بھاگی میں نہیں ہے، بھاگی میں نہیں ہوگا تو بدھی میں بیٹھے گا نہیں. کیا کہ ہم کو شرط کا رچیتا بھگوان پڑھاتے ہیں، باپ کہتے ہیں اس میں چھوڑنا تو کچھ بھی نہیں. نہ گھر بار چھوڑنے کی بات ہے اور نہ وچار چھوڑنے کی بات ہے. وچاروں کو بھی تیاگنا نہیں ہے، صرف کیا کرنا ہے ان کا روپ کو پریورتن کرنا ہے. وکاروں کو اگر تیاگیں گے تو وہ اندر اندر کیا کریں گے؟ دم چکر مچائیں گے. جیسے سنیاسی کیا کرتے ہیں، وکاروں کو ایک دم تیاگ دیتے ہیں تو اندر اندر بدھی میں دم چکر مچاتے رہتے ہیں. سنکلپ جو بیج ہے वो कोई शुद्ध और सतो प्रधान नहीं बनता। तो पत्तों को पानी देने से काम चलेगा या बीज को सुधारने से बीज को पानी देने से काम चलेगा? बीज सुधर गया, संकल्प सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा। तो संकल्प मन बुद्धि के आधार पर चलता है। मन बुद्धि को पहले चेंज करना पड़े, शरीर को बाद में कंट्रोल करने की बात है। वैसे भी मन बुद्धि रूपी आत्मा पहले पावन बनेगी और शरीर पांच जड़ तत्व को बाद में पावन बनेगी। चैतन्य को पहले चेंज होना है और जड़ को बाद में चेंज होना है। लेकिन आज की दुनिया में क्या होता है, सब उल्टा काम हो रहा है। शरीर को सुधारने के लिए देखो कितनी पढ़ाइयां चल रही हैं, कितनी दवाइयां चल रही हैं, कितने आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कोई जन्म भी नहीं जाता। मन बुद्धि रूपी आत्मा उसका जब तक सुधार नहीं हुआ है तब तक हॉस्पिटल भी भले बढ़ते चले जाएं, डॉक्टर भी भले बढ़ते चले जाएं, लेकिन दुनिया में हीरो की काया किसी की बन नहीं सकती और ही जास्ती बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि रास्ता उल्टा अपनाया हुआ है। तो बाप बताते हैं यहाँ तुमको छोड़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ रूप परिवर्तन करना है। यह है अंतिम जन्म। गृहस्थ विहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, छोड़ छाड़ के भागने की बात किसकी बुद्धि में आएगी? कन्यासियों की बुद्धि में आएगी। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे उनकी बुद्धि में छोड़ने का सब संकल्प नहीं आना चाहिए। यह है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया अमर लोक में, जहां विकार होते नहीं। तो मानना चाहिए ना, बरोबर देवताओं की महिमा भी करते हैं, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो तीन ही वाइसलेस वर्ल्ड। अच्छा बच्चे तो पैदा होते होंगे तो जरूर कोई युक्ति होती होगी, विकार से नहीं होते, इंद्रियों की वहां विकृति नहीं होती है। वहां ये पॉइजन नहीं होता है, पॉइजन मन विष है। विष किसे कहते हैं? द्वापर युग से व्यभिचार शुरू हुआ, कत्यु त्रेता में व्यभिचार नहीं होता था। दस इंद्रियों से तो आचरण होता ही नहीं था, लेकिन शेष इंद्रियों का भी व्यभिचार नहीं था। राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी और कोई में दृष्टि मात्र भी नहीं डूब सकती। तो किसी के वाइब्रेशन के प्रभाव में आने की बात तो हो ही नहीं सकती। तो वहां सत्युग में पॉइजन, पॉइजन मन पर स्त्री या पर पुरुष का संग नहीं होता, किसी को पॉइजन कहा जाता है। दुख, दुख क्या है? पर नारी या पर पुरुष का सेवन, यही दुख है। जो कब से शुरू होता है? द्वापर युग से। और यह है संपूर्ण विकारी, क्योंकि सारी दुनिया कैसी बनी हुई है? सारी दुनिया मन वचन कर्म से दुविचारी बनी हुई है, तो वाइब्रेशन का प्रभाव हो जाता है, संग का रंग लग जाता है। बात होते हैं संपूर्ण पावन, यथा राजा रानी तथा प्रजा। उसने तुमको संशय क्यों पड़ता है कि ऐसी भी दुनिया कोई हो सकती है? वहां की जो रस्म रिवाज होगी वैसे वहां बच्चे पैदा होंगे, तो वहां की रस्म रिवाज कैसी होती है आप बेचारी, और यहां की रस्म रिवाज कैसी हो गई बेचारी? वहां पायदान होता नहीं है, ये नेचर इस मृत्यु लोक का है। अभी अभी निश्चय पैदा हुआ और अभी अभी निश्चय उखड़ गया, अभी अभी शादी हुई, पति पत्नी का संग हुआ और अभी अभी एक दूसरे से इसने घट गया, ऐसा सत्युग में होता नहीं है। ये नेचर इस मृत्यु लोक का है, पायदान से बिच्छु पिंडन ही पैदा होते हैं। विचार आया और जो रचना रची जाएगी वो कैसी होगी? डंक मारने वाली रचना पैदा होगी, वो रचना कभी सुखदायी नहीं हो सकती। ब्रह्मा की संगम की दुनिया में भी रचना रची जाती है, ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं और दूसरों को ज्ञान दे करके ब्राह्मण बनाते हैं, रचना करते हैं, लेकिन वो रचना श्रेष्ठ कब बनेगी? जब हम स्वयं आप व्यभिचारी बने। तीसरा चीज, वहां कोई दुख नहीं देता है, जानवर भी इसको एक दो को दुख नहीं देते, वो भी ऐसे ही पैदा होंगे। कैसे? आप व्यभिचार, आप तुमको क्या चाहिए? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वो कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे, बाप की स्वर्ग का वर्षा ले लेंगे, और जैसे और तो कोई मिल नहीं सकता। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से दुग्ध का वर्षा ले रहे, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं, चलते चलते फिर कहा उल्टा पुलटा तूफान आता है तो निश्चय टूट पड़ता है, माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खाई थी और अभी भी हार खा लेते हैं, विकार में फंस गया, गाया भी हुआ है संग तारे कुसंग बोरे, और ये संग कौन सा है? त्रेसठ जन्म कौन सा संग चला? सत्य का संग चला, असत्य का संग चला, सत्य संग चला या अल्लाह का संग चला? त्रेसठ जन्म कन्वर्ट होते रहे तो अल्लाह संग हुआ ना, और सत्य बाप तो एक ही है, सत्य गुरु तारने वाला, तो ये है सत्य का संग। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे, नित्य में संशय आ जाता है तो उनको वर्षा नहीं मिल सकता। ऐसे बहुतों को नित्य होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते। तुम माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते हो, माया की मत पर चल पड़ते हो, ये भी ड्रामा नहीं होगा क्या? माता पिता कहते हो बाबा से बने, फिर ऐसे बात को भार्गवी देवंती हो जाती, या ईश्वर का बनना है या रावण का बनना है, तो लड़ाई है ना। तुम तो माया पर जीत प्राप्त करके समझते हैं बाबा से बनना हमको जरूर लेना, माया पर जीत पा लेते, श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको भ्रष्ट व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल को पानी टच नहीं करता है, तुमको विकार दुनिया में रहते हुए विकार में नहीं जाना, यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। जैसे कमल को कीचड़ टच नहीं करता, कीचड़ में कमल डाल दिया जाए, डुबो दिया जाए,